ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर सभी शैक्षिक संस्थाओं को चैत मासांत तक के लिए किया गया बंद। कल के लिए तय की गई एसईई की परीक्षा को भी किया गया स्थगित। सरकार ने सिनेमा हॉलों, सांस्कृतिक केंद्रों, खेल स्थल, लगायत स्थानों को बैसाख 18 गते तक के लिए बंद करने का किया निर्णय। कृषि तथा पशुपंछी मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान पहुंचाने के लिए कृषि उत्पादन में अनुदान देने की घोषणा। और भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़कर हुए 151। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने सिनेमा हॉलों, सांस्कृतिक केंद्रों, रंगशालाओं, खेल स्थलों और मनोरंजन स्थल लगायत को बैसाख 18 गते तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक ने यह निर्णय लिया है। इसी तरह बैठक ने कल से शुरू होने वाली माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को भी स्थगित किया है। इसके साथ ही बाल विकास केंद्र, आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालय और विश्वविद्यालय आदि का पठन पाठन भी चैत्र मासांत तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही बैठक ने सभी से अत्यावश्यक काम के अलावा घर से बाहर न निकलने का भी आग्रह किया है। बैठक ने सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों, पार्टी पैलेस, मठ मंदिरों, गुंबदों, मस्जिदों, चर्चों आदि धार्मिक स्थानों में 25 लोगों से ज्यादा लोगों को जमा न होने का आग्रह किया है। इसके अलावा सार्वजनिक साधनों में क्षमता से ज्यादा यात्रियों को न रखने का आग्रह किया है। सार्वजनिक यातायात सवारी मालिकों को प्रत्येक दिन सवारी साधनों को डिसइन्फेक्शन कराने और इसका नियमित अनुगमन नेपाल प्रहरी या और यातायात व्यवस्था विभाग द्वारा किया जाएगा। इसी तरह बैठक ने यूरोप के सभी देशों, पश्चिम एशिया लगायत खाड़ी क्षेत्रों के देशों, ईरान, इराक, टर्की, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान आदि से आने वाले यात्रियों को चैत्र 7 गते मध्यरात से ही आगामी बैसाख 2 गते तक आगमन में प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। बैठक ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि यदि कोई अपनी यात्रा की तारीख को परिवर्तन करता है तो उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क न लें और यदि कोई अपनी हवाई टिकट रद्द करता है तो उनके पूरे पैसे वापस कर दें। साथ ही समिति ने गृह मंत्रालय द्वारा जब्त किए गए मास्क में से 5 लाख मास्क स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय को देने और बाकी मास्क को साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था के जरिए बिक्री करने की व्यवस्था की है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की सचिवालय बैठक ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार के कदम का स्वागत बताया है। आज प्रधानमंत्री निवास बालोटार में हुई नेकपा सचिवालय बैठक में कोरोना बैठक ने ये बात कही है। कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण उच्च स्तरीय समिति के एसईई परीक्षा को रोकने लगाए निर्णयों को बैठक ने स्वागत योग्य बताया है। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री डोरमणि पौड़ेल ने कोरोना वायरस से उत्पन्न हो सकने वाली विपत्ति को लेकर प्रदेश सरकार को गंभीर बताया। आज प्रदेश सभा की बैठक में सांसदों के सवालों के जवाब देने के क्रम में ये साफ करते हुए कि कोरोना को लेकर दहशत में पड़ जाने की स्थिति फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदेश के विभिन्न स्थानों में हेल्थ डेस्क के साथ ही जनशक्ति भी तैयार है। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर विराटनगर में स्थित कोशी अंचल अस्पताल में आज से आइसोलेशन वार्ड संचालित किया गया है। अस्पताल ने पहले चरण में 3 वार्डों में 6 आइसोलेशन बेड तैयार किए हैं। ये बात अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर संगीता मिश्रा ने बताई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कुछ ही दिनों में 4 और बेड तैयार किए जाएंगे। झापा के भद्रपुर में आपातकालीन क्वारंटाइन की स्थापना की गई है। भद्रपुर नगर पालिका के प्रमुख जीवन कुमार श्रेष्ठ के मुताबिक भद्रपुर वार्ड नंबर 10 कलबलगुरी प्रशिक्षण केंद्र में कोरोना संक्रमण की आशंका वाले लोगों को जरूरी स्वास्थ्य जांच के साथ ही स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए जरूरी सामग्रियों और चिकित्सकों को भी रखने के हिसाब से 25 शैया वाले क्वारंटाइन की स्थापना की गई है। कोरोना वायरस जांच के लिए सलाई जिला प्रशासन कार्यालय के कंपाउंड में सहायता कक्ष संचालित किया गया है। ये जानकारी जिला समन्वय समिति सरलाही के प्रमुख मेथुर चौधरी ने दी है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापार विश्राम का।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते। आउनु न भित्रै।
हुन्छ हजुर।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो, हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हैं त पनि एनटीसीको सस्तो डे प्याक छदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। भारत के उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के बाद नेपालगंज रुपेडिया नाका में बगैर स्वास्थ्य जांच के नेपाल भारत प्रवेश पर रोक लगाई गई है। कोरोना वायरस फैलने की संभावनाएं बढ़ने के बाद नेपाल भारत दोनों देशों के अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र में सुरक्षा और स्वास्थ्य जांच को अधिक मजबूत बनाने का निष्कर्ष निकाला है। निर्धारित से अधिक कीमत में बेचने के लिए छिपाकर रखे गए 10,00,000 मास्क सहित गोरखा के युवराज न्योपाने को महानगरीय अपराध महाशाखा द्वारा परिचालित टोली ने राजधानी के सानो फरियांग से आज गिरफ्तार किया है। महाशाखा प्रमुख एसएसपी सहकुल बहादुर थापा ने बताया कि बीती रात सूरज आर्केड से 1,600 सैनिटाइजर और काठमांडू घाटी के विभिन्न स्थानों से 14,000 मास्क बरामद किए गए। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री घनश्याम भूसाल ने कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान पहुंचाने के लिए कृषि जन्य उत्पादों में अनुदान देने का ऐलान किया है। मंत्रालय में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री भूसाल ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब किसानों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की लागत की गारंटी होगी। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों की कीमत सरकार तय करेगी और अगर तय कीमत में उत्पाद नहीं बिक सके तो उन्हें सरकार ही खरीदेगी। प्रतिनिधि सभा की शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक ने मदन भंडारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक को संशोधन सहित पारित किया है। विधेयक में कहा गया है कि विश्वविद्यालय में किसी भी देश के विद्यार्थी अध्ययन कर सकते हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से दक्ष जनशक्तियां भी नियुक्त की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ओम भक्त श्रेष्ठ का आज निधन हो गया। आज हुई सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण बैठक ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ के निधन पर कल सुप्रीम कोर्ट के साथ ही सभी अदालतों में छुट्टी देने का निर्णय किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या बढ़कर 151 हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि 151 में से 126 भारतीय हैं और 25 विदेशी नागरिक हैं। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से 42 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। केरल में 19, उत्तर प्रदेश में 16 और कर्नाटक में 11 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी तरह दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 2,00,000 के ऊपर हो गए हैं। कुल मामले 2,01,530 हैं और मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,007 हो गई है। चीन अब भी कोरोना संक्रमण के मामले में टॉप पर है। चीन में कोरोना के अभी 81,102 मामले हैं और 31,500 मामलों के साथ इटली दूसरे नंबर पर है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर सभी शैक्षिक संस्थाओं को चैत मासांत तक के लिए किया गया बंद। कल के लिए तय की गई एसईई की परीक्षा को भी किया गया स्थगित। सरकार ने सिनेमा हॉलों, सांस्कृतिक केंद्रों, खेल स्थल लगायत स्थानों को बैसाख 18 गति तक के लिए बंद करने का किया निर्णय। कृषि तथा पशुपंछी मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान पहुंचाने के लिए कृषि उत्पादन में अनुदान देने की घोषणा। और भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़कर हुए 151। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।